ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का संबंध कल जो हमने मुरली सुनी थी उसके साथ है। कल की मुरली में कौन सी विशेष बात थी? कल की मुरली में कौन सी विशेष? यस, भाई भाई की दृष्टि। तो आज भी बाबा हम बच्चों को अपने असली स्वरूप के अभ्यास के लिए ताकीद कर रहे हैं। हमारा नेचुरल असली स्वरूप देही अभिमानी है। जब देही अभिमानी कहते हैं तो उससे अभिप्राय कोई मैं आत्मा 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 नहीं, उसकी रटन नहीं है, परंतु आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, उनका अभिव्यक्त करना, उनको साकार रूप देना, वह देही अभिमानी। जैसे भाई भाई की दृष्टि ये केवल आत्मा आत्मा होकर के हम ऐसे देखें, वो नहीं है। भाई भाई की दृष्टि अर्थात भाई का जो संबंध है, मैं अपने भाई के साथ कैसे संबंध रखती हूं, स्नेह का, प्यार का, समानता का, रिस्पेक्ट का, उन चीजों की अभिव्यक्ति है। आत्मस्थिति की तो है ही, उसके साथ साथ व्यवहार में ये सब चीजें नजर आए। ऐसे ही सोल कॉन्शियसनेस देही अभिमानी, तो मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं थोड़ी है, कब तक करेंगे? नहीं, उस चीज की जो आत्मा है उसकी अभिव्यक्ति करना देही अभिमानी है। ठीक है, सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज हम बच्चों को इसी बात के अभ्यास के लिए बारंबार कहा है कि बच्चे मन में ये पक्की धारणा हो कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है, ये दुनिया हमारी है ही नहीं। जब मन से दिल से वैराग्य होगा तब देही अभिमानी स्थिति में भी अच्छी तरह से टिक सकेंगे। अगर वैराग्य नहीं होगा तो स्थिति में टिक भी नहीं सकते। बुद्धि बार बार उस तरफ जाएगी जो चीज मुझे आकर्षित कर रही है। सुनते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न पूछा गया है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बात को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आई। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो, बाबा सर्टिफिकेट दे रहा है, मरे हुए बिल्कुल बिल्कुल मरे हुए, सांस नहीं है, नहीं है ना, कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वो जानते हैं हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती ही है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से पुरानी शरीर से मर चुके हैं, फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहां जाएंगे? अपने घर। बाबा का अभिप्राय है मर चुकना अर्थात कोई शरीर छोड़ने की बात नहीं है, परंतु इस शरीर से जो भी अटैचमेंट है वो हमारी ना हो, क्योंकि आत्मा की जबरदस्त अटैचमेंट शरीर के साथ होती है। बाबा मिसाल देते हैं जैसे मक्खन निकालते हैं ना छाछ से, इस तरीके से अपन को न्यारा इंस्ट्रूमेंट मालिक मुंह समझ करके चलना और शरीर मर चुके अर्थात बुद्धि से हमने उसको एक साधन बना के रखा है, वो मेरे जीवन की साधना नहीं है, केवल साधन है जिसके द्वारा मैं अपने संस्कारों को अभिव्यक्त कर रही हूं, अपने गुणों को अभिव्यक्त कर रही हूं, इसको कहते मरना। बाबा कहते हैं अच्छा पहले पहले तो ये पक्का याद करना है हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है। क्या फरमान मिला है आत्मा को? क्या फरमान मिला है? क्या फरमान मिला? बोलो बोलो बोलो, क्या फरमान मिला? रुचिगन क्या फरमान मिला? आत्मा को फरमान मिला हुआ है। कौन सा फरमान मिला है बोलो दीदी? मुझे याद करो। एक ही फरमान है, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्मा सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये है बहुत महीन समझने की बातें। ऐसे बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूं भैंस हूं, ऐसा कहने से भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है, ये दृष्टांत तो सबको पता है ना। एक व्यक्ति को कहा गया तुम भैंस, और उसको बंद करके एक कमरे में रख दिया, रोज उसको ये पाठ पढ़ा रहे तुम भैंस हो भैंस। जब उसको बाहर निकालने लगे तो कहे मैं कैसे निकलूं, दरवाजा तो छोटा है कैसे निकलूं, हाँ मैं भैंस हूं। तो जैसी स्मृति हम फीड करते हैं वैसा स्वरूप बनता है। अतः किस प्रकार की स्मृतियां हम अपने अंदर डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे सत्व प्रधान बनना है तो सत्व प्रधान स्मृतियां ही अंदर आए ना, दूसरी क्यों आए? तो बाबा कहते हैं, बात तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठ मिसल है। अब सितारा कहां, अंगुष्ठ कहां, फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो ग्रास व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूं, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूं। हमारे डॉक्टर एल एस माथुर जी थे, भारत के मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, और बाबा उनके बंगलों में रहे भी थे। तो आए थे कुछ दिन रहे थे बाबा। तो माथुर जी का जन्म कैसे हुआ? साइंटिस्ट थे, पहला साइंटिस्ट बच्चा बाबा का। तो मम्मा आई हुई थी दिल्ली में, तो मम्मा से मिलाने वीआईपीज को लाया जाता था। तो हमारी सुंदरी बहन है ना मालवे नगर वाली, वो इनको इनवाइट करने गई, आइए हमारी मम्मा से मिलिएगा। तो माथुर साहब कहते हैं आपकी मम्मा मुझे परमात्मा के बारे में बताएगी, क्योंकि सुंदरी बहन ने कहा होगा, उनका हाँ बताएगी। माथुर साहब आए मम्मा से मिलने और पहला सवाल किया परमात्मा क्या है, और मम्मा का उत्तर था परमात्मा एक बिंदी है। बस उनको ये बात बुद्धि में सेट हो गई। कहा साइंस भी ये मानती है बियॉन्ड इसके एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तब से फिर मम्मा ने कोर्स कराया, माथुर साहब को मम्मा ने कोर्स कराया, और उसके बाद फिर हमारी मोहिनी देवी है ना साउथ एक्सटेंशन में रहते थे तो वहां क्लास गए थे, उनकी पालना में रहे। तो बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूं, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद न करो। योगी तो दुनिया में बहुत है, सारे योगी हैं, किसी न किसी से तो योग लगा हुआ है। कन्या की सगाई होती है फिर पति के साथ योग लग जाता है, पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं नाम एक कम याद करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब ये है पतित तमो प्रधान दुनिया, अभी तुम आए हो देहत के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूं, ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अग्नि स्थापना हो रही है, ये है प्रजापिता ब्रह्म मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भाव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पति पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानोवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, शिव बाबा के सहस्त्रों नाम है। जब कन्याओं की ट्रेनिंग होती है ना तो हम उनको कहते हैं बाबा के नाम लिख के लाओ, शिव बाबा के नाम बहुत अच्छे, पूरे लगभग 1000 लिख के ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोम रस दिया है ना, सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। आज क्या टाइटल में ना, सोमनाथ सोमनाथनी। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो बाबा कहते रावणपुरी में। तो अब बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती है। ये युद्ध चलती है। बाप कहते तुम तो कर्म योगी हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को याद करो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सत्युग आता है। बाप कहते सबको खुशखबरी दो, कलयुग पूरा हो, सत्युग आता है। तो कोई सुना रहे थे, किसी ने कहा कि सत्युग आ चुका है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कोई दे रहा था, कोई किसी ने कहा कि सत्युग आ चुका है। कैसे आ चुका है वो फिर डिटेल उसमें और दी हुई है। मैंने कहा मेरे को भेज देना, मैं देखूं तो सही सत्युग किस तरीके से आंकते हैं। बाप आए हैं सत्युग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सत्युग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वो सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। ये भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद न करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। बाबा कहते सब कुछ, हम सन्यासी ऐसे नहीं है वो आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे और ये मुंह बंद करेंगे, नहीं। परंतु सब कुछ देखते हुए विजयी रहना है, तब तो मार्क्स है ना, कमाल तो इसमें है ना। अगर कोई चीज है ही नहीं और मैं कहूं मैं विजयी हूं, परीक्षा तो दी नहीं, विजयी कैसे? सब कुछ हो तो भी कोई चीज मुझ पर प्रभाव न डाले, बुद्धि को खींचे नहीं। मजा तो तब है ना, एग्जाम तो तब है। तो बाबा कहते हैं मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए ले जाता हूं, यहां ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं, कहते हैं यहां बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे, ऐसा है ना, टारगेटेड होते हैं। और ऐसे भी बना रहे हैं जो बने हुए हैं जो मनुष्य को मारेंगे, बिल्डिंग को कुछ नहीं करेंगे, वो तो मनुष्य को मारेंगे। तो बाबा कहते यहां बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। ये मूंद है, फिर से विनाश होना है। अब देखो 1939-42 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई उसमें हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया, पहली बार परंतु बाबा ने ये बमबारी कब देखी? 1936 में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो उसमें बाबा ने देखा कैसे एटम बॉम्ब आदि गिराए जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हुआ वो 39-42 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है उसमें। तो बाबा कहते हैं भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। पिता, धर्म पिता और परम पिता, तीनों के कर्तव्यों में अंतर। पिता जन्म देगा, पालना करेगा, मारेगा नहीं। धर्म पिता स्थापना करेंगे, पालना करेंगे, मारेंगे नहीं। परम पिता मारेगा, परिवर्तन करेगा। तीनों काम बाबा करते हैं। बाबा कहते हैं चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रही हो, हम ये बनेंगे, यहां की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती, तुम तो यहां का वर्षा ले जाते हो, हमें भी सब यहां से ले जाएंगे, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे, बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा, सब कुछ चलेगा, सब चलेगा काम। अभी जो राजा होते हैं तो राजाएं थोड़ी जाएंगे मार्केट में, महेंद्र भाई राजाएं थोड़ी जाएंगे मार्केट में, उसकी प्रथा आज दिन तक भी है। राजाओं के पास वस्तुएं लाई जाती है, राष्ट्रपति भवन में दिन होता है जबकि ये सब चीज, मानो साड़ी चाहिए तो साड़ी वालों को बुला लेंगे, और कुछ चाहिए तो उनको बुला लेंगे, मार्केट में नहीं जाए, वहां लगता है जिसको जो चाहिए, जिसको नहीं राष्ट्रपति के लिए लगता है, बाकियों के लिए नहीं। आज दिन तक वो है, चल रही है। हमारी दादी निर्मल शांता थी ना, बड़ी रॉयल, कितनी रॉयल, बाजार नहीं जाती ना, दादी को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब पांडव भवन दिल्ली का बना तो उसकी फर्निशिंग, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में दादी ऑलराउंडर, दादी गुलजार और दादी निर्मल शांत तीनों रहते थे, हम लोग उनके साथ ही रहते थे। तो अभी पांडव भवन को सजाना था तो ये पर्दे लेने जाना था, तो दादी निर्मल शांत को भी लेकर के गए जगदीश स्टोर पर। वो भाई इतने प्रभावित दादी के पर्सन, कहते आप यहां नहीं ठहरिए, मैं आपके घर पर ही भेज दूंगा। उसने टेम्पो भर करके डिफरेंट वैरायटी कर्टन्स के भेज दिए, इसमें से सिलेक्ट कर लो, दादी आप यहां नहीं। ये रॉयल्टी है, रॉयल्टी दादी के संस्कार ऐसे थे। बाबा कहते हैं काम तो चले, यहां से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वो सब वहां काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, है कोई भाई प्रजा योगी कोई बैठा है? मधुबन के प्रांगण में कौन प्रजा योगी होगा? सब यहां महाराजा योगी होंगे, राजयोगी महाराजा योगी। बाबा कहते हैं तुम आए ही हो, देखो किसको क्लिक करता है, तुम आए ही हो, किस लिए आए हो? बोलो पांडव, बोलो शशिकांत भाई, बोलो क्यों आए हो? बड़ा मीठा जबरदस्त पावरफुल आंसर है, क्यों आए हो? बोलो बोलो, नरसे नारायण बनने, और जिन्होंने मुरली पढ़ी वो नहीं सुना ना, राहुल भाई क्यों आए हो? बहुत बढ़िया आंसर है, सुनो, नशे वाला है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। वर्षे की बात चल रही है ना, तो किस लिए है? मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं, मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गट्टर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगे? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगे? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। कुमारियां बैठी हैं, हाथ खड़े करो कुमारियां, ऊंचे हाथ खड़े करो ऊंचे। पक्का वायदा, पक्का वायदा। बाबा कहते हैं उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहां तो तुम कहते हो कहां ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। ये भी समझते हो बाबा बिगड़ सत्युग की राजाई कोई दे नहीं सकती। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, बाप दादा की भी आपस में कभी रूढ़वान चलती है, बाबा और शिव बाबा। ये बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो ना, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है, ये तुम्हारा रथ लेता हूं उसके एवजे में तो देता ही हूं, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहां बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूं पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूं, ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुक दू करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। आजकल हम ब्राह्मण भी, हमारी भाषा में भी ये शब्द आ गया है, आशीर्वाद कर दो, सिर पे हाथ रख दो, ब्राह्मण भी बोलने लग गए भगत भक्ति के। एक बार बड़ी दादी, मेरे को बड़ी दादी प्रकाशमणि से दृष्टि लेना बहुत अच्छा लगता था, मैं तो मैं सौगात नहीं लगे मुझे दृष्टि दो, तो दादी मुझे दृष्टि देते भी थे। लेकिन दादी ने मेरे को एक दिन क्या कहा, एक दिन का, आशा तू भगत है? मैंने कहा मैं बिल्कुल भगत नहीं हूं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। सीख लिया, यहां तक दादियां अटेंशन खिंचाती थी, यहां तक। तो आज तुम्हारे मुख से निकलता है मैं सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो, ये करो, यही बोलते हैं ना सब, आते हैं तो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, भक्ति के संस्कार दिखते हैं। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही है हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, ये तो पता नहीं कौन सा गीत है, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है ना, सिर्फ कलकत्ता में सभी तरफ गणेश पूजा भी होती है, तो क्या करते हैं जाके फिर समुद्र में डाल देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी ये होगा। सत्युग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड की नोंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं। बाप कहते सब अलफ अरबे, बाप और बादशाही को याद करो, अंदर में यही धुन लगा दो, हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई हैं। चित्तों पर समझाओ, बहुत सहज है, ये है रूहानी बच्चों से रूहान। बाप रूहान करते हैं बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस माना जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं रोना नहीं है। सत्य प्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं है। वो है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहां करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मेरा माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेगी। स्लोगन, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्तिशारी, सत्यता और सभ्यता की कल्चर, आपकी आंतरिक स्वच्छता सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रतिष्ठा के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे। जरा भी हलचल न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। इति प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली क्या रहे? देही अभिमानी मुझे याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, वर्षे को याद करो, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है। देना कोई को, ओम शांति। आदरणीय ब्रजमन भाई का समाचार आप शिलु दीदी कहती है बताने के लिए। मैं कभी कभी देखती हूं बाबा के कर्तव्य बड़े निराले हैं। भगवान भगवान है और भगवान अपना कार्य कैसे करता है बहुत निराला है, बहुत निराला है। जब इन भाइयों की जीवन को देखते हैं, हमारे जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्वैर भाई, ब्रजमोहन भाई, तो बाबा ने 1968 में जब इन चारों भाइयों की आयु बहुत छोटी थी, हमारे निर्वैर भाई की आयु 29 वर्ष, ब्रजमोहन भाई की आयु 33 वर्ष, रमेश भाई थोड़े बड़े थे, जगदीश भाई बड़े थे, इन छोटे छोटे भाइयों में भगवान ने इतनी उम्मीद रखी कि सारे यज्ञ, दादी कुमारका को रखा जो भी छोटी सी आयु की थी, दीदी भी छोटी सी आयु, इतने सारे बड़े यज्ञ को संभालने के निमित्त बनेंगे। 33 वर्ष का बच्चा, 29 वर्ष का बच्चा क्या होता है? आज भी आप बैठे होंगे, लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी है, तो त्रिकालदर्शी ने इन पर अपनी नजर रखी और मैनेजमेंट कमिटी जो बनाई वो बाबा खुद बना करके गए, जिसमें ये लोग उपस्थित थे, चारों भाई और दादी दीदी। लंबी स्टोरीज, इन सबकी लंबी लंबी स्टोरीज हैं, किसी को कहां रखा, किसको कहां रखा, किसको कहां रखा, ये बाबा की ही स्कीम थी। तो भाई साहब की तबीयत तो अच्छी थी, भाई साहब मधुबन में शांतिवन में पिछले 4-5 वर्षों से स्वास्थ्य तो अच्छा ही था, और लगभग 6 मास पूर्व मैंने पूछा, भाई साहब आपका हार्ट ठीक है, हार्ट की चेकिंग कराई, कहते हाँ मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है। तो वक्त होता है, 16 जनवरी को मैं मधुबन में ही थी और उसी दिन भाई साहब का स्वास्थ्य खराब हुआ, ट्रॉमा लेके गए, फिर वहां पर अहमदाबाद 17 जनवरी को, और वहां पर मैं क्या बताऊं आपको, बाबा की कितनी मदद, डॉक्टर्स तो एक साइड पर है लेकिन बाबा की मदद, डॉक्टर्स का कहना है, आज भी वो ये बात कहते हैं, कहते हैं ये मेडिकल साइंस का काम नहीं है, मेडिकल साइंस का काम होता हम 15 दिन में ठीक कर देते हैं, परंतु ये ऊपर वाले का काम है, और आप लोगों के योग तपस्या का प्रताप है जो इतनी तूफानी सुनामी जैसी परिस्थितियों से पार करके आए हैं। ये भाई साहब की अपनी विल पावर, अपनी मनोबल और उनकी तपस्या का प्रताप है। एक एक डॉक्टर। और जब आईसीयू में थे तो ऐसे शीशा होता था, बाहर से लोग आते थे और भाई साहब को देख करके नमन दर्शन करके जाते थे। कहते महातपस्वी डॉक्टर आते थे, एक डॉक्टर आया, कहता मैंने इनका नाम सुना, उसने गूगल किया, गूगल से ही भाई साहब का सारा पता लगाया, तो उसको बहुत श्रद्धा से भर गया। कहता मैं इतनी महान आत्मा का मैं उपचार कर रहा हूं, झुक गया। इस प्रकार कई डॉक्टर्स के अपने अपने बहुत अच्छे कमेंट्स थे, परंतु ये ऐसे ही कहेंगे कि बाबा ने आपको रखा है विशेष कार्य अर्थ, तो विशेष कार्य करने का भाई साहब का एम भी है। और 2 महीने हम लोग थे अपोलो में, वहां संपन्न होने के बाद ठीक स्टेबल स्थिति जब भाई साहब की हुई है तब उन्होंने कहा आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी भाई साहब ठीक हैं, मेडिकली ठीक हैं, केवल उनको खाने में, क्योंकि अंदर वेंटिलेटर था ना, तो वेंटिलेटर का सब अंदर में छिल जाता है, नलियां छिल जाती हैं, तो उसके कारण से उनको खाने में निगलने में भी तकलीफ है, राइस ट्यूब से देते हैं, परंतु अभी विजिटर्स को अलाउ नहीं किया है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, सारे एपिसोड में इस आत्मा ने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। इस सारे एपिसोड में एक दिन भी मुरली मिस नहीं किए। शाम का नुमा शाम का योग 1 घंटे का, तो ये व्यक्ति की तपस्या काम तो आती है ना, बस हमको योग के अच्छे वाइब्रेशंस, गुड वाइब्रेशंस, गुड विशेस के वाइब्रेशंस देते रहना है, ताकि ये जो फेज है जिसमें खाने की आ रही है बात है वो भाई सब शुरू करते हैं, वो एक नुक्ता है, शुरू हो जाएगा। जैसे बाबा ने इतना बड़ा तूफान पार कराया है ये भी हो जाएगा। और इसमें मैंने देखा हमारे सारे ब्राह्मण परिवार का प्यार भरा सहयोग बहुत योग के वाइब्रेशन से उपलब्ध हुआ। योग सारे विश्व में चल रहा था तो ये कोई कम बात नहीं है, तो इसके लिए आप सबका थैंक्स भी है, और इसको कंटिन्यू ही रखें, हमारे अपने लिए भी, हमारे यज्ञ के लिए भी। हमारा सारा यज्ञ आज भाषणों से नहीं, प्रोग्राम से नहीं, आज सारे यज्ञ में केवल 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 हमारी योग की आवश्यकता है, योग के वाइब्रेशन के, जिसको हमको बरकरार करना है। ठीक है, ओम शांति।
तो अभी जीवन भाई कहाँ है? ग्लोबल हॉस्पिटल में। ग्लोबल हॉस्पिटल में अभी ना, आप बता दें।
हाँ, वो बताएं भाई साहब, ग्लोबल हॉस्पिटल में ही उनको अभी रखा है, क्योंकि सब चीज स्टेबल हो, नॉर्मल हो, डॉक्टर्स की निगरानी में, वैसे सब ठीक है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है, कभी भी ओल्ड बॉडी है तो कभी भी जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स की निगरानी।
उम्र हो गई उनकी
भाई साहब की? भाई साहब
91 भाई, ताली बजाओ।
पूरी स्टोरी तो मैं नहीं सुना सकती, अगर मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊं तो आप देखें बाबा की कैसे मदद रही है।
ओम शांति। आशा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और भी सुनते रहेंगे इनसे, अभी हम सब बाबा की याद में बैठते हैं। उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे।